समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
बिल्कुल, आज का दिन सच में बहुत ही महान है क्योंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती है ही, साथ ही आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस को जहां अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने कई अन्य जाने अनजाने वीरों के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और अहिंसा के दर्शन का प्रचार किया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई। तो इसी प्रारंभिक जानकारी के साथ बुधवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और वीसी प्रमोद, हम दोनों का नमस्कार।
Hello Ravi and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the entire Akashvani network. We bring for you our ever exciting daily news magazine program Aaj Savere, wherein over the next half an hour we'll bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 2nd of October. But let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi will participate in the Swachh Bharat Divas program in New Delhi this morning on the occasion of the 155th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The event marks the completion of 10 years of the Swachh Bharat mission, one of the most significant mass movements for cleanliness. Ravi, I think ye jo movement hua tha ye bahut hi acha movement tha na, Swachh Bharat Abhiyan jo hai
ye ek aitihasik movement tha jiski jitni bhi tareef ki jaye kam hai
जी।
इस मूवमेंट के जरिए जो है एक संदेश दिया गया था कि हमें किस तरह अपने वातावरण को, अपने देश को पूरी तरह से स्वच्छ रखना है।
एब्सोल्युटली। ड्यूरिंग द प्रोग्राम द प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च एंड ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेवरल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस वर्थ ओवर 9,600 crore rupees. दीज इंक्लूड प्रोजेक्ट्स अंडर अमृत एंड अमृत 2.0, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड 15 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट्स अंडर गोवर्धन स्कीम।
कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती के अवसर पर स्मरण कर रहा है।
Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Hazaribagh in Jharkhand today. During his visit, Mr. Modi will lay the foundation stone and inaugurate various projects worth over 83,000 crore rupees in the state. The Prime Minister will launch the ambitious Dharti Abha Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan with a total outlay of over 79,000 crore rupees. Later, Mr. Modi will also address a public meeting at Gandhi Maidan in Hazaribagh.
ईरान ने कल रात इसराइल पर कम से कम 180 मिसाइलें दागी। ईरान की इस कार्रवाई से क्षेत्र में चौतरफा युद्ध की आशंका बढ़ गई। ये मिसाइल हमले हाल ही में हिजबुल्ला और हमास के सदस्यों की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि ईरान ने पिछले साल से कोई सबक नहीं सीखा। इजरायली सेना के प्रवक्ता जनरल हगारी ने कहा कि कल रात हुए हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और इसराइल के हवाई क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली वायुसेना मध्य पूर्व में शक्तिशाली हमला करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को समर्थन देने का आश्वासन दिया है और साथ ही ईरान को इस हमले के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में कल रात तेल अवीव में एक आतंकवादी हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और 9 अन्य घायल हो गए हैं।
That's right, Ravi. In view of the prevailing situation in the region, the Embassy of India in Tel Aviv has advised Indian nationals in Israel to stay vigilant and adhere to the safety protocols and as advised by local authorities. The embassy requested them to exercise caution, avoid unnecessary travel within the country and stay close to safety shelters. It said the embassy is closely monitoring the situation and remains in regular touch with the Israeli authorities to ensure safety of all Indian nationals.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर में हुई क्वाड बैठक और द्विपक्षीय वार्ता में उठाए गए मुद्दों पर अनुवर्ती विचार विमर्श किया। बैठक में आपसी सहयोग, पश्चिम एशिया की स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप की हाल की घटनाओं, हिंद प्रशांत और यूक्रेन के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रहे हैं वीसी प्रमोद।
थैंक यू रवि। मैं शुरू करूंगा चेन्नई से।
जी,
द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ 3-month सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर एल्डरली हेल्थ सपोर्ट असिस्टेंस एट ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स मार्किंग इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। Health Minister M. Subramaniam said that 10-13% of the patients in government hospitals are elderly and require some sort of assistance for post-care health maintenance. He said that in 3 months, 975 people will be trained at premier institutions and will assist the elderly in hospice care. He said that candidates who have passed Class 10 exams can enroll themselves in the course conducted by the National Institute of Aging. And continuing with news from Chennai, Metro Water Chennai has announced that consumers can now change or make correction to their name for free from now onwards. Previously, consumers were being charged ₹100 for the same. Metro Water currently serves 13.85 lakh consumers who pay for water and sewage services. Upon submission of the documents, applications will be processed and verified without any charges at the respective area of the Greater Chennai Corporation. Still with Chennai, Deputy Chief Minister Udayanidhi Stalin today inaugurated the Vijay Amrit Raj Pavilion at the stadium of the Sports Development Authority of Tamil Nadu. In a speech, he lauded Vijay Amrit Raj and said that he is one of the inspirational personalities for the young students. The stadium is home to the Chennai Open, the ATP Challenger and the WTA matches. And now moving on to Bengaluru, the Mysuru City Police have made extensive security arrangements during the Mysuru Dasara festivities from October 3rd to 12th. The City Police Commissioner Seema Latkar informed media persons in Mysuru today that 2,996 police personnel led by 16 superintendents of police will secure 45 venues where the Dasara festivities will be held in the heritage city. Tight security arrangements are made at Chamundi Hill, where the dignitaries will inaugurate the festival. On Vijayadashami, October 12th, high-level security arrangements will be made during the Jambu Savari procession and torchlight parade. 380 CCTV cameras, additional 150 CCTV cameras will be installed at major locations in the city. The police personnel will also use body-worn cameras to monitor the crowd. A mobile command center will keep the communication network active. The authorities will keep 20 ambulances and 20 fire extinguishers near various venues of the Dasara festivities. And now moving on to Hyderabad, Telangana Cyber Security Bureau, TGSSB, has apprehended 27 persons who were facilitating cyber fraudsters by opening and sharing bank account details and helping in transfer of money belonging to victims of cyber frauds. Director of TGSB, Shikha Goyal, said in an interstate operation lasting for over a fortnight, four teams with assistance of the Rajasthan police raided several places and caught 27 persons. She informed that these 27 persons are involved in over 2,200 cybercrime cases registered across the country, amounting to a loss of over 11 crore rupees to the victims. In Telangana alone, they were involved in 189 cases. The teams had collected data of over 100 persons who were from Rajasthan and were helping the cyber fraudsters. The police seized 31 mobile phones, 37 SIM cards, 13 ATM cards, 7 checkbooks and 2 hard disks from them. The persons were brought on transit warrant from Rajasthan and produced in a local court in Hyderabad, and all of them were remanded. So Ravi, those were the metro news from Chennai, Bangalore, Hyderabad. What do you have for us from Delhi, Mumbai and Kolkata?
भाई मेरे पास भी बहुत सी खबरें हैं इन तीनों मेट्रो से, तो शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कुटुंब ऐप का उद्घाटन किया। इस ऐप का उद्देश्य दिल्ली के पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक अभियान के अंतर्गत 65,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इस ऐप पर पंजीकृत किया गया है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था दिवस के मौके पर वजीरपुर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले स्मारक वृद्ध आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सहित दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने कल राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर सड़कों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने रिंग रोड पर सराय काले खां, निजामुद्दीन नेहरू विहार फ्लाईओवर, मूलचंद अंडरपास और अगस्त क्रांति मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ पूर्वी दिल्ली के अलकनंदा और सीआर पार्क की सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सड़कों की जल्द से जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार के मंत्रियों द्वारा राजधानी की सड़कों का निरीक्षण शुरू करने पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बीते 10 वर्ष में कुछ नहीं किया और अब चुनाव से पहले सड़कों का दौरा कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही से शहर की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं और सीवर के साथ ही पेयजल की लाइनें जगह जगह से टूटी पड़ी हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से हमारी यमुना वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित इस वॉकथॉन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। हमारी यमुना वॉकथॉन में 500 से अधिक एनसीसी कैडेट, अधिकारियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य लोगों को यमुना नदी के प्रति उनकी सामूहिक जिम्मेदारी को याद दिलाना और नदी को साफ रखने के लिए जागरूक करना था। इस अवसर पर श्री सहगल ने कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि पूर्वजों ने जो स्वच्छ नदियां प्रदान की थी, उसी स्थिति में आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ नदियां प्राप्त हों। आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कल नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी मुख्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एल मधुनाग और निदेशक सुभाश्री महापात्रा ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पौधों के रखरखाव का संकल्प लिया और अन्य अधिकारियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की विभिन्न इकाइयों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के अंतर्गत देश भर में पौधारोपण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 3 जिलों में शनिवार तक विरोध प्रदर्शनों और 5 से अधिक अनाधिकृत लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय मध्य दिल्ली, नई दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा सोमवार से लागू हो गई है और इस महीने की 5 तारीख तक जारी रहेगी। बढ़ते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी द्वारा संचालित नायर अस्पताल में यौन उत्पीड़न के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी को अस्पताल के डीन का तत्काल तबादला करने का निर्देश दिया है। मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि अस्पताल के कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय लागू किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कोलकाता की ओर। आज पितृपक्ष का अंत के साथ देवी पक्ष की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आज लोग पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल में जल निकायों, नदी तटों पर तर्पण किया जाएगा। प्रशासन ने इस अवसर के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए राज्य आपदा मोचन निधि SDRF के केंद्रीय हिस्से से और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि NDRF से अग्रिम के रूप में 468 करोड़ रूपये जारी किए। गृहमंत्री अमित शाह ने कल एक एक्स पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और प्रमोद के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम के बारे में प्रमोद बात कर लेते हैं
जी।
तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता की अगर बात करें तो वहां बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
वैसे मुझे लगा था कि आप बारिश की बात नहीं करोगे, बिकॉज मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऑफिशियली मॉनसून खत्म हो चुके हैं
जी।
लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी दो स्टेट्स में थोड़ी बहुत बारिश की।
बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो मॉनसून है वो शायद फिर से वापसी करने की सोच रहा है।
जी जी, आप हमें यहाँ वहां ले गए, मैं आपको साउथ में ले जाता हूँ।
ठीक है
जी। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have rain or thunder showers and would occur towards evening or night. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
जी, 1836 रवि, मैं आपको बहुत पहले ले जा रहा हूं
जी।
Charles Darwin returned to England after a five-year journey on the HMS Beagle, on which he gathered the specimens and observations of that led to his theory of evolution by natural selection.
1924 में आज के दिन राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से लाया गया जिनेवा प्रस्ताव 1924 महासभा द्वारा स्वीकृत हुआ, लेकिन बाद में उसकी पुष्टि नहीं हुई। 1952 में आज के दिन भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और 1961 में आज के दिन बंबई, तत्कालीन बंबई
जी,
जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आज के दिन गठन हुआ।
That's right, 1967, October 2nd, American lawyer and civil rights activist Thurgood Marshall was sworn in as an associate justice of the US Supreme Court, becoming its first African American member.
1971 में आज के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने गांधी सदन के नाम से प्रसिद्ध बिरला हाउस देश को समर्पित किया
जी। इन 1979 द सेकेंड फेज ऑफ ऑपरेशन फ्लड, दैट इज द व्हाइट रेवोल्यूशन, वॉज लॉन्च्ड एंड विद द एम टू इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, रूरल इनकम्स एंड प्रोवाइडिंग रीजनेबल प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स।
1985 में आज के दिन दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया। 1988 में आज के दिन कोरिया के सियोल में 24वीं ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। 1988 में आज के दिन तमिलनाडु में मंडपम और पंबन के बीच समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल खुला।
In 1995, on October 2nd, the government of India instituted Gandhi Peace Prize on the occasion of the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The award is open to all persons, regardless of nationality, race, language, caste, creed, or gender. And in the year 2000, veteran Indian hockey player Mukesh Kumar retired from the sport. He represented India in 307 international matches and scored 80 goals.
सन 2000 में आज के दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की चार दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। सन 2001 में आज के दिन 19 देशों के संगठन नाटो ने अफगानिस्तान पर हमले के लिए हरी झंडी दी। 2003 में हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मेडगेसी भारत की यात्रा पर आज के दिन आए। सन 2004 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कांगो में 5900 सैनिक भेजने के प्रस्ताव को मंजूर किया। सन 2006 में आज के दिन दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले में भारत को समर्थन देने का फैसला किया और सन 2007 में आज ही के दिन उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच दूसरी शिखर बैठक संपन्न हुई।
In 2007, the United Nations General Assembly adopted a resolution establishing the International Day of Nonviolence on October 2nd every year to spread the message of nonviolence, including education and public awareness. And very important, Ravi, in 2014, exactly 10 years ago, Prime Minister Narendra Modi launched the Swachh Bharat Mission, which emphasizes equitable access to sanitation for all, especially vulnerable populations.
और अब जिक्र जन्म जयंतियों का, जिसमें सबसे पहला नाम है महात्मा गांधी का, जिनको ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। आपका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और निधन 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु आपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था। इस आश्रम से महात्मा गांधी आजीवन जुड़े रहे, इसीलिए उन्हें साबरमती का संत की उपाधि भी मिली।
हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
आज ही जन्म जयंती है प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 और निधन 11 जनवरी 1966 को। वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपने निधन तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे और इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहक यानी कि बस कंडक्टर्स की प्रमोद नियुक्ति की थी और पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग करवाना प्रारंभ करवाया था। और वे एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकीकरण की राह भी दिखाई।
शास्त्री जी सिंपल आदमी थे,
बहुत बहुत। शास्त्री जी किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश के सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपने उनकी ईमानदारी की बात की
जी,
तो एक किस्सा है छोटा सा, वो ये कि उनके जो पुत्र थे, एक बार सरकारी गाड़ी जो थी उसको उनको बिना बताए जो है वो लेके चले गए
ऐसे
और चुपचाप लाके गाड़ी को रख दिया। और जब शास्त्री जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा भाई कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, तो पता लगा कि इतने किलोमीटर गाड़ी चली है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि इतने किलोमीटर का इतना पैसा जो है उससे कहो बेटे से कि वो जमा करा। तो देखिए कितने ईमानदार थे
उस समय के लोग, ऐसे थे
बिल्कुल। और एक और हल्का सा किस्सा है कि जब फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग शास्त्री जी से मिलने आए दिल्ली में, तो बातों ही बातों में शास्त्री जी ने उनको कहा मनोज कुमार जी को कि क्या कोई आप ऐसी फिल्म बना सकते हैं जिसमें किसानों के बारे में जी, और जी। देश के जवानों के बारे में बातचीत हो, उनके बारे में जिक्र हो। तो मनोज कुमार जी ने फिल्म उपकार लिखी और जिसमें वही एक सदाबहार इतना हिट गाना है जो आज तक हम सब सुनते हैं जी। सुन लेते हैं वही गीत मेरे देश की धरती।
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
October 2nd, 1948 is also the birth anniversary of Persis Khambatta. She was an Indian actress, model and beauty pageant title holder, best remembered playing Lieutenant Ilya in the feature film Star Trek The Motion Picture. She was born in Bombay to a middle class Parsi family, and she gained fame when her set of pictures, casually taken by a well-known Bombay photographer, was used for a successful campaign for a popular soap brand. रवि, पर्सिस खंबाटा इज दैट पर्सन जिन्होंने इंडियन फैशन को वर्ल्ड मैप में डाल दिया
जी,
एंड शी इज बेस्ट नोन फॉर हर कैरेक्टर इलिया इन स्टार ट्रेक। लेट्स प्ले द टाइटल सॉन्ग ऑफ स्टार ट्रेक
जी। और अब अपने श्रोताओं संग मना लेते हैं भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता आशा पारिक का जन्मदिन, जिनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1942 महुआ गुजरात में। वे 1959 से 1973 तक हिंदी फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। 60 के दशक में अपनी अभिनय प्रतिभा से सभी को अचंभित कर देने वाली अभिनेत्री आशा पारिक ने शम्मी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, देवानंद, अशोक कुमार, सुनील दत्त और राजेश खन्ना जैसे मझे हुए कलाकारों के साथ काम किया, और अपने लंबे फिल्मी कैरियर में आशा पारिक ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। और आगे तो बातें इनके बारे में बहुत भी करने को, लेकिन इन पर पिक्चर कुछ गाने सुन लेते हैं।
करेक्ट।
बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हर पिया हर 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 पिया काटा लगा हाय लगा आजा राजा। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हर पिया हर 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 पिया काटा लगा राजा। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हार पिया
तेरे कारण मेरे साजन तेरे कारण मेरे साजन जाग के फिर सो गई सपनों में खो गई आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई रे पालमा तेरे कारण मेरे साजन। अच्छा तो हम चलते हैं
फिर कब मिलोगे
जब तुम कहोगे
जुम्मे रात को
हाँ हाँ आधी रात को
कहाँ
वही जहाँ कोई आता जाता नहीं
भाई। चलना तो हमें भी है, लेकिन चलते चलते है आज का विचार कि दूसरों का भला होते देखने की क्षमता जिसके भीतर है उसकी प्रगति साक्षात ईश्वर भी नहीं रोक सकते। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और वीसी प्रमोद को आज मेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने की।
That's right, stay tuned for coming up next, समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाई मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
नमस्कार।